نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج ان شاء اللہ تعالی ہم سورۃ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 19 سے آگے کی کچھ آیات کو لیں گے. ایک ایک آیت کو دیکھتے جاتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں لیتے جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ پر. فَهُمْ يُوزَعُونَ, تو وہ سب جمع کر دیے جائیں گے. آپ سب اس وقت تصور میں قیامت کا میدان لائیے, ایک بہت بڑا میدان ہے اور لوگ وہاں جمع ہیں, اگلے بھی ہیں اور پچھلے بھی ہیں. امیجینیشن میں آ رہا ہے کچھ؟ میرے ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے گریجویشن پارٹی. آپ لوگوں نے دنیا میں اپنے بچوں کی اور ان کے دوستوں کی, اپنے رشتہ داروں کی گریجویشن سیریمنیز اٹینڈ کی ہوں گی. سب پچھلے اولڈ اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, اگلے بھی آتے ہیں, اسٹوڈنٹس خود بھی ہوتے ہیں, پھر اسی طرح سے ان کے رشتہ دار بھی بلائے جاتے ہیں. یہ سب کیوں بلائے جاتے ہیں؟ کیا آؤ آج ذرا دیکھو کہ ہم نے جو محنت کی تھی اس کا کیا نتیجہ نکلا. بس میں اور آپ اس وقت کسی اور کو نہ سوچیں, اپنے اوپر لیں. یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے. آج میں یہاں امتحان دے رہی ہوں. اس کمرے میں جو کچھ بولتی ہوں, سوچتی ہوں, دیکھتی ہوں, سنتی ہوں, سوچتی ہوں, یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور آج کا یہ میرا دن اگر دیکھیں تو 3 گھنٹوں کا ہے. بچپن, جوانی, بڑھاپا. عموماً اسکول کے جو ایگزامس ہوتے ہیں وہ بھی 3 ہی گھنٹے کے ہوتے ہیں. جو جتنی جلدی پیپر حل کرنا شروع کر دیتا ہے آخر پہ وہ زیادہ بے چین نہیں ہوتا, پریشان نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے وقت پہ کام شروع کیا تھا. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو وقت پہ تو ادھر ادھر تاکتا جھاکتا رہے اور جب آخری گھنٹہ شروع ہو تو پھر اس کو پریشانی ہو. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ سے پیپر چھین لیا جاتا ہے اور وہ لکھ نہیں پاتے. وجہ کیا؟ کہ انہوں نے ٹائم کو ٹھیک مینج نہیں کیا تھا یا پہلا وقت ضائع کر دیا. یہی کیفیت ہم سب کی بھی ہے. ہم میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدائی بہاروں سے ہی اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا. ڈے ون سے نہ کہہ لیجئے تو 10-12 سال جو شعور کی عمر ہوتی ہے اسی سے ہی بات سے سمجھتی کہ ہم اس دنیا میں فن کے لیے نہیں آئے. دس ورلڈ از ناٹ اے فن پلیکس. وی آر ان این ایگزامینیشن ہال. وی آر سرچڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. سورۃ انفطار میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک تمہارے اوپر 2 لکھنے والے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, تم جو بولتے ہو لکھ لیتے ہو, لکھ لیا جاتا ہے. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. کوئی لفظ بھی جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو ہمارا فرشتہ اس کو بڑی جلدی سے لکھ لیتا ہے, فوراً 1 سیکنڈ میں لکھ لیتا ہے. ابھی میں نے کتنے لفظ بولے آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی گن بھی نہیں سکے گا. آپ سن لیں اور اس کو یاد رکھ لیں, کچھ باتوں کو بڑی بات ہے, لیکن تقریباً 4 منٹ ابھی ہوئے ہیں مجھے بات شروع کیے ہوئے. ان 4 منٹس کی 1 سیکنڈ, ملی سیکنڈ کی ریکارڈنگ فرشتوں نے کر لی. میں نے جو بولا وہ بھی لکھ لیا, جو مسٹیکس کی ہوں گی وہ بھی لکھ لی ہوں گی. میری کوئی بات آپ کے دل پہ اتری, آپ نے اس کو کس طرح سے سنا, آپ اس وقت کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں سننے کے لیے, فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں اور یہ سب ریکارڈ بنتا جا رہا ہے. جب ہماری موت آتی ہے نا, جس دن انسان کی موت آتی ہے, وَالنَّازِيَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, جب موت کا وقت آتا ہے تو بس ہمارا زندگی کا یہ پیپر بند کر دیا جاتا ہے. اس کی ایک ڈیڈ لائن ہے. ہماری اس زندگی کے آخری سانس, بلکہ چند گھڑیوں میں تو اس سے پہلے ہی یہ بند کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ اور میں کچھ نہیں لکھ سکتے. हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है, इज़ा मात अल इंसानु इनकते अमलु हो, जब एक इंसान मर जाता है तो उसका नाम अमल मुनकते हो जाता है। इल्ला मिन सलास, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं जो उसके मरने के बाद भी उसको फ़ायदा देती हैं। उसमें पहली चीज़ वलदुन सालेहुन यदू लहू बादहू, नेक औलाद जो उसके मरने के बाद भी उसके लिए दुआ करती है, अच्छे काम करती है, वो तो एक ऑन गोइंग चैरिटी है, वो तो आपका एक करंट अकाउंट है जो आपके मरने के बाद बंद नहीं होगा। दुनिया के बैंकों का आपने मामला देखा होगा कि आपके नाम पे दुनिया में कहीं भी बैंक हो, जो ही आपका डेथ सर्टिफिकेट बनता है ना, तो उसके फौरन बाद आपको बैंकों से स्टेटमेंट्स आती हैं। तकरीबन 1-1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड के फादर की डेथ हुई, तो वो उस वक्त पाकिस्तान में थे, अमेरिकन नेशनल थे, सब कुछ था, फौत पाकिस्तान में हुए, वहाँ उनका डेथ सर्टिफिकेट बना होगा, लेकिन 2-3 महीने जब गुजरे तो उनके बच्चों को सब बैंकों से, उनके क्रेडिट कार्ड से मैसेज आने शुरू हो गए कि वी नॉक ही इज़ एक्सपायर्ड, तो अब उनके सब कार्ड्स अकाउंट्स बंद हो गए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि वो तो पाकिस्तान में फौत हुए, इनको कैसे पता चला अमेरिका में? तो उन्होंने कहा कि जो ही इनका डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ, सबको पता था, वो अमेरिकन सिटीजन थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट अमेरिकन एम्बेसी में गया, अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू उन्होंने अपने अमेरिका के हर इदारे को बता दिया कि अब ये शख्स बहुत हो चुका है, कहीं कोई इनका कोई कार्ड या पेपर मिसयूज ना करे। उसके बाद मैं हिल गई थी कि देखें, हम दुनिया के किसी कोने में भी मरेंगे ना, तो हमारे मरने की खबर फैल जाएगी, और जब हम दुनिया से जाएंगे ना, उस वक्त भी हम कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। दैट्स इट। तीन साथ के लफ्ज आते हैं, वो साथ कितनी लंबी है किसी को नहीं पता। हदीस में आता है, तीन साथ पहले पहले मरने से अगर इंसान तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी कबूल कर देगा। लेकिन एक तरफ मौत के असरात शुरू हो गए, नजा आ गई, तब उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा को कबूल करता है, मालम युगरगिर, यहां तक कि उसको गरगरा ना लग जाए। और गरगरा कहते हैं जब रूह यहां फंस जाती है, हंसली में जब फंसती है रूह, तो उस वक्त जब वहां से फरिश्ता खींचता है, उससे पहले पहले तौबा कबूल है। इसीलिए तो ये फिरौन की तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि उसने मौत के फरिश्ते को देखकर तौबा की। और ये दुनिया में भी बात समझ आती है, एक चोर चोरी से सारी जिंदगी तौबा ना करे, लेकिन जो ही पुलिसमैन को देखे हथकड़ियां लेकर आता हुआ, तो के आज छोड़ दो, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, तो वो उस वक्त छोड़ेगा तो नहीं, फिर तो हर चोर भाग जाए। जेल में जाकर तो हर एक ही तौबा करता हुआ दिखता है। तो लिहाजा मैं और आप इस वक्त दुनिया में, अब जब हम इस दुनिया में आए, ये 3 घंटे का जो हमारा टाइम पीरियड था, कुछ ने अल्लाह की रजा का गुजार लिया, उसका जिक्र बेसिकली इनसे ऊपर की आयतों में, जिसको मैंने अभी इस वक्त साथ नहीं लिया, लेकिन अब यहां अल्लाह ताला कह रहे हैं, याद करो वो वक्त जब अल्लाह के ये दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन कौन है? सिंपल सी बात है, जिसने अल्लाह के क्रिएशन प्लान को नहीं समझा। जैसे आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप इस मुल्क के रूल्स को फॉलो करते हैं, आप बड़े इज्जत शहरी हैं, आप यहाँ के सिटीजन हैं, आपकी बड़ी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन क्रिमिनल्स को क्यों पुलिस ढूंढती रहती है? ये सारा दिन पुलिस की गाड़ियाँ इधर से उधर क्यों जाती हैं? ताकि जो मिसचीफ कर रहे हैं, जो फसाद फैला रहे हैं, उनको पकड़ के कैदों में डालें। ये जेलें किन के लिए बनी है? क्या अमेरिका चाहता है कि जेलें बनाए? लेकिन बनानी क्यों पड़ती है? उन लोगों के लिए जो मुल्क के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते। सेम थिंग इस दुनिया में आज मेरी और आपकी है। हम इस दुनिया में आए, अगर हम अल्लाह ताला के कानून को नहीं मान रहे, तो कल अल्लाह ना करे क्यामत के दिन ये हाल हो जाए। फरमाया, जब ये दुश्मन घेर लिए जाएंगे, कीजिए का एक होता है खुद चलना, एक दूसरी सूरज है कि खुद नहीं जा रहे बल्कि इनको खींच के लिया जाए। आयत को सोचती हूँ ना, तो मेरे जहन में वक्त पुराना किसी खबरों में देखा हुआ कोई सीन नजर आता है कि किसी जेल के कैदी की बात है, हथकड़ियां लगी कर लेकर जा रहे हैं, और वो छोटी सी खबर टीवी की खबरों में आती थी कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, वो कैदी बन गए, ये हो गया। जिन सारी जिंदगी खुद को इस आजाद, इट्स माई स्टाइल, इट्स माई लाइफ, इट्स माई डिसीजन, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू, जिसको आप कह लीजिए खुली छुट्टी मिली हुई है। कुछ लोगों ने दुनिया में खुली छुट्टी ली हुई आज भी, कुछ ने तो इस्लाम से छुट्टी ले ली, कुछ ने तो अल्लाह के वजूद से छुट्टी ले ली, लेकिन कुछ ने इस्लाम लेकर भी छुट्टी ली हुई है। वो कहते हैं सिर्फ नाम के मुस्लिम, दैट्स इट। क्या इतना काफी नहीं है कि हम खुद को मुसलमान कहते हैं? तो हर एक जिस हद तक डिसोबीडियंट है, हर इंसान जिस हद तक रिबेलियस है, जिस हद तक ट्रांसग्रेशन का शिकार है, जिस हद तक वो अल्लाह ताला के कानूनों को तोड़ता है, वो क्रिमिनल है, वो मुजरिम है। उसको उतनी बड़ी हथकड़ी डाली जाएगी और उनको दोजख की तरफ ले जाया जाएगा। दोजख की तरफ क्यों ले जाया जाएगा? क्योंकि सारी जिंदगी वो अल्लाह के कानून तोड़ते रहे, तो दोजख के प्रिजन। आप लिख सकते हैं अपने पास कि दोजख के प्रिजन ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला। और हदीस में आता है सिजन के लफ्ज हैं, और सिजन अरबी जुबान में कैद को कहते हैं। आप दुनिया में भी किसी आम अच्छे इंसान को तो पकड़ के जेल में नहीं डाल देते ना, कोई मजबूरी में किसी मुश्किल की वजह से डाल भी दिया जाए तो बाद में उसको निकाल दिया जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो जिंदगी भर अपने मर्जी के काम करते रहे, जो दिल चाहा कर लिया, जो दिल चाहा वो ना किया। देखिए, जरूरी नहीं होता कि जेल में वो शख्स जाए जो कोई अच्छा काम नहीं करता, ऐसा तो नहीं होता। सारे अच्छे काम कर रहे होते, कोई एक गलत काम कर दिया। मसलन अगर कोई चोरी के इल्जाम में जेल में जाता है तो सिर्फ उसने चोरी की ना, इसके बावजूद हो सकता है वो मुल्क में बिल्कुल ठीक रह रहा था, टैक्स भी दे रहा था, या ओवर स्पीडिंग भी नहीं की, तो एक गुना भी जेल पे ले जाता है ना। इसी तरह इस जिंदगी में मैं और आपको, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही 100% गलत काम करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे, कोई एक गुना भी जहन्नुम में ले जा सकता है। सिंपल सी मिसाल है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को सिर्फ एक फल का चखना जन्नत से निकालने का जरिया बन गया, और इबलीस सिर्फ एक सजदे का इनकार करके जन्नत से निकाल दिया गया। इबलीस को देखिए तो वो सिंबल है इबादत में कमी पर जन्नत से निकलने का। इतने भी सजदे किए लेकिन एक दिन नहीं किया, नहीं दिलकारा करने को, नहीं पढ़ती नमाज, देख लेंगे जो होगा, पर रख लिए रोजे, अब क्या जरूरत है बाद ईद के दिन भी नमाज पढ़ूं, कपड़े खराब हो जाएंगे, वजू कौन करे। बस वो एक सजदा भी हो सकता है, कोई इबलीस वाला सजदा बन जाए कि जिसकी वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह इनकार नहीं करता बाकी चीजों का, लेकिन अल्लाह कहते आज क्यों नहीं किया। मैं तुमसे आज ही पूछ सकता, जैसे अगर कोई एक दफा कोई ओवर स्पीडिंग करे तो पुलिस उसको ये नहीं कहती कि हमेशा तुम ठीक स्पीड रखते हो, वो कहते आज ओवर स्पीड क्यों किया। तो बात क्या समझ आई कि इबादात में भी थोड़ी सी कमी, या जिसको आप कहें कि तकब्बुर के नाम पे जो कमी है ना, ये जन्नत से निकाल देगी। और आदम और हव्वा ने जो फल चखा, उसमें किस चीज का सिंबल दिखता है आपको? मुझे हराम को हलाल बना लिया। अल्लाह ने सारी जन्नत हलाल की थी, खाओ कुलू मिनहा, जहां से मर्जी खाओ, रगदन जितना खाओ सब खाओ। हाँ, वला तकरबा हाजिही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना, फतकून मिन जालिमीन, जालिम हो जाओगे। तो क्या पता चला कि आज वो लोग जो इबादत के नाम पे इबादत पूरी करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखे, उन्होंने सब कुछ किया, हज और उमरे से भी इनकार नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी में, खाने पीने में, कमाने में, रहने सहने में, औरतों मर्दों की लिमिटेशंस में, जहां भी अल्लाह ने किसी चीज की इजाजत नहीं दी, वो अपनी मर्जी से उसको कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनके साथ मामला कर सकता है। फिर अगली चीज देखिए कि यूज ऑन, वो सब इकट्ठे होंगे, इनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। ये भी इमेजिन कीजिए, वो क्यों? दुनिया में हमारे जिन में क्या आता है, चले जी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, अब सेकंड ग्रेड का होगा। कभी कहते हैं आज सुबह के वक्त में शुरू के ग्रेड बच्चों हैं, ले शाम में यंग बच्चों के रिजल्ट निकलेंगे। क्यामत के दिन में ऐसा नहीं होगा। आप और मैं ये सोचें अगर कि हम 2015 में आए हैं, ओ अच्छा क़यामत के दिन हम वहाँ मैदान हशर में खड़े किए जाएंगे। फिर पहले 2000 से पीछे जाइए, 20 साल, जितनी भी सदियां, जब दुनिया बनी, पहले आदम का हिसाब होगा, फिर आदम के दूसरे बच्चों का, तीसरी नस्ल चढ़, करते करते पता नहीं कब हमारी बारी आएगी। दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना, क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी डराने वाली बात है, और मैं जब इसको सोचती हूँ तो मेरा दिमाग घूमने लगता है कि अल्लाह के अकाउंट्स कितने बड़े हैं, और अल्लाह के रैकेट कीपिंग दफ्तर कितने बड़े हैं, और अल्लाह ताला के हाँ जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर्स हैं लोगों के हिसाब रखने के, वो कितने। हम चंद 100 स्टूडेंट्स के रैकेट रख रहे होते हैं ना, तो हमारी अकल घूम जाती है बाज़ दफ़ा कि उनका रैकेट इसको किस में डालें, उसको किधर करें, एक साल वाले का दूसरे के, एक में 10 कोर्स चल रहे हैं तो एक कोर्स के स्टूडेंट दूसरे के, तीसरे में, ये छोटे छोटे काम ही सारा दिन साथी करते रहते हैं, और इतनी सहूलतों के बावजूद। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ताला एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, या एक पुश्त के बाद दूसरी पुश्त को नहीं बुलाएगा, बल्कि क्या होगा, यूज़ाउन, सब नस्लें जमा कर दी जाएंगी। यानी आप हैं, आपकी माँ है उसी हॉल में, आपके अम्मी अबू हैं, आपके नानी नाना भी हैं, आपके दादी दादा भी हैं, फिर आपकी परदादी परदादा, पर नाना पर नानी, फिर चढ़ नाना, जितनी भी नस्लें हैं ना आपके ऊपर, वो सब क़यामत के दिन इकट्ठे होंगे, और सबसे बयक वक्त इकट्ठे हिसाब होगा। वजह वजह के एक तो पहली बात है कि अल्लाह ताला ने अगर दुनिया में किसी को देर से भेजा है तो अब ये नहीं कि वहां लाइनों में लगा दिया जाए। दूसरी बात यह कि हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे या बुरे काम करता है ना, इसके असरात आने वाली नस्ल पे छोड़ता है।